वे वर्धमान महान दिन मिचरे हमारे ध्यान में। समय सार कर्मागम में पुण्य पाप अधिकार में 104 में कलश की चर्चा अपन ने कल शाम को की थी थोड़ी। उसमें सिर्फ एक बात कहना बाकी है, उसे कहकर फिर आगे अगली गाथा पर जाएंगे। मूल कलश में तो इतना पॉजिटिव बात कही है, पॉजिटिव माने निषिद्धे सर्विस्मिन सुकृत दुरते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मेण न मुनिया संति असरणा। पॉजिटिव क्या है इसमें कि सुकृत और दुरित पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों के पूरी तरह निषेध कर देने पर मुनिराज असरण नहीं होंगे, क्योंकि वे नैष कर्म में प्रवृत्ति करेंगे। पॉजिटिव बात है, है ना। अभी तो अपन समझते प्रवृत्ति, मैंने कल कहा था ना थोड़ा शाम को कि जैन दर्शन को निर्वृत्ति मार्ग कहते हैं। और क्योंकि जिन इन सब ये छोड़ो तो आत्मा में जो प्रवृत्ति है उसे प्रवृत्ति नहीं मानते वे लोग। स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्था लिखा ना समय सार में, स्वसमय में प्रवृत्ति तो कहते हुए निष्कर्म, यहाँ पर निष्कर्म में प्रवृत्ति करेंगे। गीता में कहा निष्काम कर्म और अपने कहा निष्कर्म कर्म। आगे जो विशुद्ध सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, उसमें बहुत विस्तार से इस निष्कर्म की काशाएं कलश हैं और बहुत अच्छे हैं वो रोजाना पाठ करने लायक हैं। क्या मैं तो निष्कर्म में जाता हूँ, मैं तो निष्कर्म में जाता हूँ, वास्तव में तो अपने आत्मा में जाने की बात है। लेकिन चूंकि वहां कर्म है ना, तो उसका निषेध के लिए यहां इसे निष्कर्म कहा है। नेगेटिव शब्द का प्रयोग है, लेकिन निष्कर्म में प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति मार्ग पर से निर्वृत्ति और स्वामे प्रवृत्ति, ये जैन दर्शन है। पर सारी दुनिया स्वा को तो एक तरफ छोड़ देती है और पर में प्रवृत्ति और पर से निर्वृत्ति। इसलिए वो कहते पर में जगह वो लोग क्या मानते हैं अहिंसा को, देखो कि अहिंसा का कोई पॉजिटिव स्वरूप है ऐसा बोलते हैं। तो मेरा व्याख्यान सुनते हैं अहिंसा का, एक घंटे का वो तो मैं राग आदि का उत्पत्ति नहीं होना ये सब बताता हूँ ना, तो वो कहते हैं अहिंसा कोई नेगेटिव ही नेगेटिव है क्या कि ये नहीं करना ये नहीं करना, ये जीवों को नहीं मारना, राग नहीं करना, कोई उसका पॉजिटिव स्वरूप है क्या? नहीं है। और फिर वो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव स्वरूप क्या है कि गौशालाएं खोलना, कोई किसी को मार रहा हो तो उसे बचाना, ये पॉजिटिव स्वरूप है क्या? और अपने यहां तो पर में प्रवृत्ति नेगेटिव है और अपने में प्रवृत्ति पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को तो वो जानते ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं नेगेटिव ही नेगेटिव बात करते हैं कि ये मत करो ये मत करो ये मत करो, करो क्या ये बताते नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा में लीन हो निष्कर्म करो ये बात उनकी समझ में आती नहीं है। अभी जो इस कलश में जो पूरी बिल्कुल पॉजिटिव है वो खुद ही कह देते हैं कि हमने सुभाषुभ भाव का निषेध किया तो तुम ये समझ लेना कि मुनि असरण नहीं हो जाएंगे, उनको तो अपने आत्मा के ध्यान का बहुत बड़ा काम है। पॉजिटिव है ना। अब बनारसी दास ने से प्रश्नोत्तर में कन्वर्ट कर दिया, तो चार लेनों में प्रश्न और चार लेनों में उत्तर, ये जो अंतर है वो ये बताना मुझे बाकी था बस। देखो बनारसी दास का पढ़ते हैं, शिष्य कहे स्वामी तुम्हें करनी अशुभ शुभ कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है, मुख के सदैया ज्ञाता देश विरहती मुनि की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। कि उन्होंने चार लेन में प्रश्न बना दिया। एक विशेषता तो मैंने कल बता दी थी कि उनने अकेला मुनिया लिखा और इनने अब ज्ञाता माने सम्य दृष्टि देशवृत्ति और मुनि, मुनि ये तीनों ले लिए। ऐसा क्यों किया? भैया अमृतचंद्र मुनि थे तो उन्हें मुनियों की समस्याएं दिखाई देती थी क्या है? और ये बनारसी दास जी ग्रस्त थे तो इन्हें ग्रस्तों की समस्या दिखाई देती थी कि भाई मुनि तो असरण नहीं होंगे लेकिन ग्रस्त तो असरण हो जाएंगे, तो ग्रस्तों को तुम अशुभ भाव का निषेध क्यों करते हो? तो उन्होंने कह दिया था सबको एक सी ही पोजीशन है। और इसी के संदर्भ में मैंने वो बात थोड़ी सी कल की थी ना ब्रह्मचारी लोगों की, तो बहुत गलत लोगों ने समझ लिया उसको। मैंने बहनों के लिए कुछ नहीं कहा कि ब्रह्मचारी बहनों का जीवन, तो मैंने ये कहा था कल भी कि बहन श्री बहन जैसा पवित्र है कि 24 घंटा स्वाध्याय में लगी रहती है। और वात्सल्य भाव तो इनका इतना है कि अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हम जितना अनुभव करते हैं। इनके लिए हमने कोई नहीं कुछ नहीं कहा और सुनो सब पुरुषों के लिए भी नहीं कहा। पुरुष ब्रह्मचारी जो ज्ञान ध्यान में लगे हैं उनके लिए नहीं कहा। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी हैं तो वे पढ़ने ही पढ़ाने में रहते हैं, ध्यान जाते में घूम गुणस्थान ही गुणस्थान पढ़ाते रहते हैं। क्यों? दूसरी कोई बातें नहीं करते हैं, किसी चीज में उलझते ही नहीं है। आपके हेमते जी हैं, ये 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। जब हम आते हैं तो ए दादा मोक्ष प्रकाशक में यहाँ फलानी जगह, ए फलानी जगह, ए प्रसार में ए वही वही बातें। अरे ये तो करने के लिए हम कह रहे, तुम कोई साधना गुणस्थान में चले जाओगे हमेशा थोड़ी मानते। ये स्वाध्याय रूप प्रवृत्ति ये तो इसका तो हमने समर्थन किया था, लेकिन ना शुभ है ना शुद्ध है। और वो बिल्कुल 24 घंटा गृहस्थी में भी होते तो ऐसे अशुद्ध में नहीं उलझते, वैसे उलझे में उलझे हैं उनकी तरफ हमने थोड़ी सा संकेत किया था है? अब देख दिक्कत है ना कि नाम लेके कर दें तो वो झगड़ा खड़ा होता है। क्यों? नाम लेके कर दें झगड़ा खड़ा होता है, नाम नहीं ले तो फिर कॉमन में सब पता चला जाता है। लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी है कि जिसका जीवन में ऐसा है ही नहीं उसको क्यों अपने माथे पर लेना है ही नहीं भाई। उस साथ में वो बात भी तो बताई ना, रेल में एक दाढ़ी वाले मियां जी बैठे गेट जा रहे थे, लंबी दाढ़ी थी। सामने की बेंच पे कुछ कॉलेजी लड़के बैठे थे, तो आप उनकी मजाक उड़ाने के लिए आप उसमें कहते थे एक दूसरे से कहता है सुना तुमने कि जो दाढ़ी वाले जितने मियां होते हैं ना वो तो एक नंबर के बेवकूफ होते हैं, एक नंबर के मुंह रखो। नहीं दूसरा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ऐसे कह कह के वो बाल आपको बढ़ाते थे और उसी उसी बात को तुम मियां अकेला बेचारा दादा क्या बोले, अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तो उसने क्या किया, अपनी जेब में से माचिस निकाली और दाढ़ी ऐसी पकड़ी, माचिस की आग लगाई और दाढ़ी में आग लगाई, ऐसा हाथ से पकड़ के। तो वो दाढ़ी जली तो हाथ जला, हाथ जला तो हाथ छोड़ दिया, पूरी दाढ़ी जल गई, चेहरा जल गया। और फिर बोला अब बोलो तुम कि दाढ़ी वाले मियां मूर्ख होते हैं। बोले अब क्या बोलने की जरूरत है, तुमने प्रूफ पेश कर दिया। क्यों? तो भैया वो तीव्र कसार वाले जो लोग हैं यदि उनका नाम ले दें तो वे प्रमाण पेश कर देंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या क्या? लेकिन हम इतना समझते हैं कि इतना तो आप सब लोग समझते ही हैं और इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात थी, ऐसा विकल्प नहीं करना। यहाँ भी यही लिखा देखो कि देशवृत्ति ज्ञाता ये प्रकरण था ना मुनीष, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। ये शिष्य का प्रश्न है, साफ लिखा कि शिष्य कहे और फिर उत्तर दिया कहे गुरु, यानी शिष्य गुरु के संवाद के रूप में उन्होंने पलट दिया। संवाद वैसे गद्य में होते हैं क्या, लेकिन उन्होंने पद्य में भी संवाद के रूप में रख दिया, इसलिए वैसे नाटक समय सार बोलते हैं ना। नाटक क्यों? कि नाटकों में संवाद होते हैं, और वहां एक गुरु बैठा होता है, एक शिष्य बैठा होता है, समझना। तो फिर गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। वो शिष्य हाजिर कर, हे गुरुदेव, यदि ऐसा आप कहोगे कि स्वभाव भी ये हैं, तो फिर सारे ज्ञाता देशवृत्ति और मुनि ऐसे हो जाएंगे, इसलिए आप सबको ये मत कहो। तो गुरु जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, उन्हें कोई निरावलंब नहीं होंगे, अपने भगवान आत्मा का ध्यान करने की जब उनकी है, तो ऐसा संवाद होता है ना। तो गुरु कहे शिष्य कहे नहीं बोलना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं, नाटक दो तरह के होते हैं राजेंद्र जी, कौन कौन, एक श्रव्य नाटक और एक पाठ नाटक। कुछ नाटक तो ऐसे होते हैं जो सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं, किए जाते हैं, वो देखे जाते हैं, जो अभिनय स्टेज पर, क्यों नहीं, स्टेज पर एक आदमी पूछेगा, दूसरा बोलेगा, तो वो गुरु शिष्य नहीं बताना पड़ेगा, वो तो अपने आप उसके मुंह में डाल देंगे, गुरु जी ऐसा कहोगे तो ऐसा, क्योंकि नहीं शिष्य, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तो उसमें समझ में आ जाएगा ना। लेकिन अब जो पढ़ने हैं कि ना, उसमें क्या करें। तो जो पठनीय नाटक होते हैं, समय सार नाटक जैसे, उनमें ऐसा लिखना पड़ता है, गुरु कहे, शिष्य कहे, ठीक। ये सब काव्य की विधाएं हैं, काव्य शास्त्र में ये सब बातें लिखी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ऐसे अपने मेरे पेट में से पैदा नहीं की है, सब साहित्य में से ही पढ़ी है, ख्याल में आई ना। अब गुरु क्या कहते हैं, कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अविलंब उन ही को उन पाही है। अरे भाई, उनके पास उनका अवलंबन है ना, अनुभव का अभ्यास, उन्हें क्या करना है। हम लोग भी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां वैसे विदेश जाते हैं, तो वहां पर दिन भर ये सब लोग चले जाते हैं नौकरी पर, और हम अकेले घर पर पड़े रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं आपका मन नहीं लगता होगा, मुझे हमें क्या करना मन का, हमारे पास एक किताबें हैं ना शास्त्र, आप चिंता मत करो, हमारी चिंता मत करो, हमको कोई 8 दिन भी अकेले रहना पड़ेगा तो हमें अकेलापन नहीं रहेगा, क्योंकि हम इन किताबों के साथ रहते हैं, और जो किताबों का स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके लिए 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाता है, चाहे रेल में हो, चाहे प्लेन में हो, क्यों, एक किताब साथ में रखो, पता ही नहीं चले कब रेलवे कहां पहुंच गए, है ना। तो वो कहते हैं कि उनका, उनके पास है ना, वो आत्मा का ध्यान वाले तो हाथ में किताब भी नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। वो किताब ले, स्वाध्याय के लिए तो किताब लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, तो कभी किसी को आंख से कम दिखता है, गाड़ी हिलती है तो पढ़ नहीं सकते हैं, होता कि नहीं होता, हमारी और आपकी हालत ऐसी हो जाती कि नहीं। तो अपने पास इतना माल है ना, क्या करना है अपन को। मैं हरेक से एक बात कहता हूं, आज आपसे फिर कहता हूं, कहा भी होगा कि भैया, जब से दिखाई देना बंद हो उसके पहले इतना स्वाध्याय कर लेना कि फिर किसी दूसरे से नहीं कहना पड़े कि भैया तू सुना। क्यों, जब तक सुनाई देता है तब तक गुरुदेव सेठ जैसे महापुरुषों के प्रवचन इतने सुन लेना कि जब कान सुनना बंद कर दें तो किसी से फिर क्या कहोगी कि तू सुना दे, क्या कहोगे। आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, फिर क्या होगा कि अपने पास अंदर में इतना माल हो कि हम उसको ही घोटते रहे कि साहब हमें तो याद नहीं रहता है, कविता याद नहीं रहती है। नहीं, कविता की क्या जरूरत है, वो जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन किया है तुम अपनी भाषा में उसे सोचते रहो ना। और भाषा में सोचना क्यों बोलते हैं, मन में तो भाषा बोली नहीं जाती है, फिर भी अपन मन में भी मनो का जो विकल्प चलते हैं भाषा रूप। देखो बिल्कुल आप बोलो नहीं तो मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ऐसा आवाज नहीं निकले तो भी अंदर में मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ ऐसा विकल्प चलता है कि नहीं चलता है। इसके भी आगे फिर वो निर्विकल्प किसे बोलते हैं, कि वो विकल्प भी चला जाए और मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ का रतन ऐसा भगवान आत्मा का अंदर में ऐसे बोलते अजपा जाप कि बिना जपे का जाप, वो स्थिति हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर हमें कभी कोई अकेलापन नहीं लगेगा। ऐसा तो हो गई ना कि जब हमें बेड रेस्ट हो जाएगी और हम चल फिर नहीं पाएंगे तो बाल बच्चे ये सब 24 घंटा हमारे साथ थोड़ी बैठे रहेंगे, और हमारे शिष्यगण भी देखो वो तो अभी अपने उम्र के हैं ना, उन्हें अपने आजीविका भी करनी है और अपने उम्र के हिसाब से सारे और जीवन की तरक्की के काम करना है, मनोरंजन करना है, सब करेंगे। वो हमारी आपकी सुबह शाम खाने पीने की व्यवस्था देख देंगे, क्यों आवश्यकता की पूर्ति कर देंगे, बाकी 24 घंटा तो हमारे पास नहीं बैठे रह सकते। वो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे तो उनकी शक्ल हमें दिखती नहीं है, उनके शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ते, करते हैं बैठे बैठे भी क्या करेंगे, क्यों है? तो अपने पास इतना माल होना चाहिए है, गुरुदेव का दिया हुआ है? अभी तो कैसेट लगा लो, जब तक सुनते हो तब, नहीं पढ़ पाते हो तो कैसेट लगा लो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा तो कैसेट भी समझ में नहीं आएगी, सुना ही नहीं देगी तो समझ में कहां से आएगी। इसमें लिखा है ना, गुरु कहे कर्म को नाश, कर्म का नाश कैसे होता है, अनुभव का अभ्यास, अनुभव का अभ्यास करो। देखो लिखा ना, ताते जिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और जिन भर कथित तत्व अभ्यास का मतलब अभ्यास को हमने बोल दिया पढ़ना, और जिन भर के तत्व है ना जीवा जीवा बंध संबंध जरा मोक्ष तत्व, क्यों ऐसा नहीं, जिन भर ने जो तत्व कहा है, जो जो तत्व कहे हैं नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जो तत्व कहा है क्या मतलब कि उन्होंने बताया है पुण्य पाप मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये तत्व है, क्यों सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, ये तत्व है, एक दिन दूसरे दिन का कर्ता नहीं है, ये तत्व है, जीव जीव आश्रय बंध एक तत्व नहीं है, ये सब तत्व है, इसका अभ्यास करो। वो इन सबसे भिन्न मेरा एक भगवान आत्मा है, वो त्रिकाली ध्रुव है, उसमें कोई कहीं कुछ जाता नहीं है, उसके ध्यान का नाम धर्म है, उसके ज्ञान का नाम धर्म है, उसके सिद्धांत का नाम धर्म है, ये सब तत्व है। ताते जिन भर नहीं गहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अविलंब उन्हें ही को उन्हें पाही है, उनका माने ज्ञाता देश बरती मुनीष। अब अपन उन्हीं का माने अपना, अब ज्ञाता अपन अपना, अपन को तो अपना काम करना है ना भाई, तुम्हारी मूल वस्तु तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या गया है? जब मैं ये बात एक जगह समझा रहा था तो एक बुजुर्ग भाई बोले कि पंडित जी ऐसा ना हो जाए कि गोला बदल जाए। क्या गोला बदल जाए, मैंने मैं नहीं समझा, मेरी समझ में भी नहीं आया था। मैंने पूछा भैया गोला बदल जाए मैंने क्या, तो बोले आप नहीं जानते हो कैसे बुंदेलखंडी हो, ये आते हैं ना सोना ठगने वाली। तो एक घर गए, एक माता बहन से कहा कि मैं तुम्हारा घर का जितना सोना है वो सोना निकाल के लाओ तो मैं दुगुना कर दूंगा, एक चूड़ी डालेंगे तो दो चूड़ी बन जाएगी। जो सोना दुगुना करने वाले आते हैं ना वो ठगिया, तो उन्होंने क्या किया कि वो सब उतार के ले आए घर के साथ सोना, ला करके उन्होंने एक मिट्टी गीली मिट्टी बनाई और मिट्टी के गोले के अंदर वे सोने के सब रख दिए और वो गोला बना दिया, उसके अंदर बिल्कुल वे सब गहने रख दिए। और एक कहा कि अभी एक बढ़िया अग्नि का कुंड बनाओ और अग्नि के कुंड में ये गोला रख देंगे खाना ना, और फिर ये तपेगा गलेगा तो दोना, फिर जब खोलेंगे तो ये डबल निकलेगा। तो वो उसने रखा, अब किसी काम के बहाने से उसने उस महिला को घर में भेजा कि ये लाओ पानी लाओ कोई भी चीज लाओ। वो बेचारी गई तो उसने अपने थैले में से उतनी बड़ा एक गोला और था वो निकाल के उसमें रख दिया और वो गोला बदल के अपने थैले में रख लिया। क्या अब फिर जाकर उसे लगा के आग लगा दी, वो बनने लगे, बैठे लगे। और फिर ऐसा कह के कि मैं अभी आता हूँ पेशाब करके, और वो बाहर लेके निकल गया, वो भाग गया। तो बहुत देर तक नहीं आया तो मैंने सोचे अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो भाग गया, कहाँ है कहाँ है, ये भाग जान दो, अपना गोला तो यहीं रखा, गोला तो इसमें ही रखा है, तो गहने तो इसमें ही है ना, क्यों तो मार तो चला गया था। तो ऐसे तुम कह रहे हो वो अपना भगवान आत्मा अपने ही पास है, अपने ही पास है, अपने ही पास है, और कहीं गोला तोड़े और गुण देखा ही नहीं, ये गोला ना बदल जा, तुम हमसे पुण्य तो छुड़वा दो, पूजा पाठ तो छुड़वा दो, क्यों? और अंदर में जो गोला है ना तुम्हारे आत्मा का शुद्ध नरे जी का सफेद सफेद, और वो गोला अंदर सड़ा निकलेगा, निकला ही नहीं तो क्या होगा। हाँ, ऐसा कह रहे बता नहीं, गुरु कहे गुरु कर्म कोना से अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलम्ब उन्हीं को उन्हें पाही है, निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौड़ धूप पुदगल पर छाई है। अब जो और दौड़ धूप माने क्या होगा भैया, दौड़ धूप माने शुभभाव, दौड़ धूप है वो कहते कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं रखा है इसे पुद्गल का खेल है, इसमें क्या दम है, वो शुभ भाव को पुद्गल कह रहे हैं। और दौड़ धूप पुद्गल की परछाई है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ कि जब मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था और 11-12 वर्ष का रहा हूँ, बेटा तुमसे भी छोटा हो सकता है, तुम कितने वर्ष के हो, 15 के, हम तो 12 के थे। तो उस वक्त हमारे मंदिर में एक मूर्ति थी खड़ी, और उसके पैर टूट गए थे, वो सोनागिरी में आज भी रखी है, जहां भी टूटी फूटी मूर्तियां रखी ना खड़ी, इतनी खड़ी मूर्ति है संगमरमर की, पैर टूट गए हैं तंजे। तो दूसरी मूर्ति पद्मासन विराजमान करने के लिए वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उन्होंने कहा जाप करना है, तो हमें भी बैठा दिया जाप में। अभी जाप में आप लोग बैठे होंगे तो आपको भी अनुभव होगा। तो उन्होंने सामने एक वो रख देते हैं जला करके, उसमें धूप डाले, धूप डालो इसमें, और फिर इस हाथ में माला, इसमें से धूप लो, और वो ऐसा हाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये उंगली छूना नहीं चाहिए, फिर ये उंगली छूना नहीं चाहिए, फिर इतने से होना चाहिए, फिर ऐसी धूप डालो, उसमें से धुआं निकलता है, धूप डालो तो एकदम गला खराब होता है, खांसी आती है। अब इससे माला बढ़ाओ, जब माला पूरी हो जाए तो एक बादाम यहां से उठा के यहां रख दो, क्योंकि ये आप दाप करो। मैंने कहा भैया हमारे बस की इतना नहीं है, एक बोले एक बुढ़िया चटका है, फिर यहाँ ये डाले हैं, फिर ऐसा हाथ ना लग जाए, ये हम नहीं कर सकते। कि नहीं आप नहीं करोगे तो ये गिनती कैसे होगी। मैंने कहा भैया यही करेंगे मंत्र का जाप, क्या करें तो क्या करोगे। मैंने कहा हम तो अकेले कुछ नहीं करेंगे, और नमो काम जो भी तुम मंत्र दे रहे हो शांति से वो बोलेंगे, सही घटना है, हम वो माला का गुड़िया भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उंगली में भी आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम जाप करेंगे मंत्र का। तो गिनती कैसे होगी कि हमारे पड़ोस में जो बैठा है ना, हम उसके साथ बैठेंगे, और जब वो उठेगा तब उठेंगे, वो जितनी वो अपनी मालाएं लिखे उतनी हमारी लिखे। क्या है? अब ये कोई गुरुदेव ने नहीं बिगाड़ा हमको, हम तो पहले ही बिगड़े बिगड़ाए, तब हमारे दिमाग में आता था ये क्या आडंबर है। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी बीसमंत्री थे, तो वहां पर बंदा मरदाल अभिषेक और फूल पत्ती सब होता था, और दोनों दो विद्यार्थियों की पूजा करने की ड्यूटी रहती थी, और एक को फूल लाने की ड्यूटी, बगीचे में से फूल तोड़ के लाने की थी। तो छोटे बच्चे होते थे उनको फूल तोड़ के लाने की रहती थी ड्यूटी, और बड़े बच्चे होते थे उनको वो रहती थी पूजा करने की। तो पहले हमारा फूल लाने में नंबर होता था, अब उस दिन हमारा पेपर था और फूल का नंबर नहीं था, हम नहीं लाए थे, नहीं आए तो भाई कहाँ हो यार, फूल नहीं आए, फूल नहीं आए, किसका नंबर है, कोई दाखाजी हुई, हम वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, एकदम गुरु जी आ गए, क्या फूल क्यों नहीं लाए, हमारा पेपर है, आधे घंटे बाद तो पेपर देने जाना है, तो नहीं लाए फूल, तो फिर ऐसे पास हो जाओगे क्या, ऐसा बोले वो मखंडा जी थे, ऐसे पास हो जाओगे, माने उन्हें क्या कहा, फूल लाने से यदि पास होते हैं तो हमें पास नहीं होना है, उनसे कहा, फूल लाने से पास होने का क्या संबंध है, पास होने का संबंध तो पढ़ने से है ना, और ये भी कहा साथ में कि आज तक हुकुमचंद को फैल करने वाला पैदा नहीं हुआ है, क्या बकता है, क्या बकता है, क्या आपने ऐसी बात क्यों कही, नंबर दो कम आएंगे तो ज्यादा आएंगे अलग बात है, लेकिन पास होने की बात क्यों करते हो, कोई तर्क है, कोई युक्ति है, इसका नाम जाप है, इसका नाम माला है, काय की माला, काय का जाप, तेरा भगवान आत्मा है, हम तो ये कहते हैं कि तुम अपने अंतर जल्प हो गए तो बढ़िया, बैर जल्प हो गए तो बढ़िया, और ना हो गए तो उससे बढ़िया, पर उपयोग उधर रहे, इतनी सी बात है, इसमें क्या क्या बात है, इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा बोल तो बोलना नहीं, सोचना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, द्रव्य संग्रह में लिखा है, मां चिट्ठई मां जंपई मां चिंतई, है ना, फिर हो ये फिर मे अम्मी, अपने में फिर हो जाओ, मां जंपई मैंने बोलो मत, मां चिंतई सोचो मत, और मां चिट्ठई चेष्टा मत कर, मैंने मनोवचन कहा थे, और अपने में फिर हो जाओ, फिर एक एक मेव फिर हो, ऐसा है ना, वो उसका नाम ध्यान है, हैं, यही परम ध्यान है, ऐसा दृढ़ संग्रह में लिखा जो मैंने पढ़ी है कथा, तो निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिवरूप और दौड़ धूप पुद्गल परछाई है, और सारी क्रियाओं को आचार्य दौड़ धूप कह रहे हैं, दौड़ धूप कोई अच्छा शब्द नहीं है क्या, कि मुफ्त की दौड़ धूप करने से क्या फायदा है, कह को दौड़ धूप कर रहे हैं, कह को दौड़ धूप कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब गड़बड़ हो गया, क्या है कि वो चंदन तो है ही नहीं, नहीं है तो मत रहते, क्या फर्क पड़ता है, जल को दो थाली में मार देंगे, दो कटोरी में, वो एक को चंदन मान लेंगे और एक को जल मान लेंगे, चढ़ा देंगे, काय को रो रहा है, नहीं है तो नहीं रहना दे, क्या कह कैसा कहता कि जल को चंदन मान लेंगे, अरे स्थापना में चेत है ना, ऐसा कैसे चल सकता है, सब चल रहा है ना, भगवान भी स्थापना में चेत, इस चुटके भी स्थापना में चेत, दीपक जी क्या नहीं है, यहां तो सब ही, और हम भी इंद्र बन गए, हम इंद्र चंद्र है ही नहीं हम तो मनुष्य हैं, क्यों मनुष्य करते के लिए पूजा नहीं कर सकते, पूजा करने के लिए कार्टून बनना जरूरी है क्यों, हम जैसे कपड़ा पहने वैसे कपड़े नहीं रह सकते भैया, क्यों एक आए के मुकुट काय के एक आए के एक, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अब जितना है प्रदर्शन चालू कराते हो तो बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने माथे पे तो नहीं करने देता, पर आज नहीं, मेरी 18-19 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी तब भी मैंने इन रोजाना के पहने हुए कपड़े इनसे ही किया था, किसी को मुकुट नहीं बांधने दिया, किसी को तिलक नहीं लगाने दिया, किसी को माहौर नहीं लगाने दिया, जिसको फेरे पाड़ना हो तो ऐसे पाड़ दो और नहीं पाड़ना हो तो मत पाड़ो, पर तुम्हें पाड़ने की क्या जरूरत, हमें ही पाड़ देंगे, पंडित बोलता था वो तो हमें जाता था सर, हम उसे अच्छा बोल देते थे पर हमें पाड़ देंगे, बता दे उसमें क्या है, कुछ नहीं, उस वक्त से बिल्कुल आदम है ना, उन्होंने कहा कि जैसे कोई संस्कार था गुरुदेव जैसे उसका कोई समागम रहा होगा कभी, बोलते अब अपना अगला कलश अगला अगली क्या था 151 पर मठो खलु समयो शुद्धो जो केवली मुनि राणी तम मठ दास
मुनिणोपावंती ने बाणम। विचित्र गाथा है। परमार्थ समय शोध केवली मुनि ज्ञानी सहाब ये सब एक आत्मा के नाम है। केवली भी आत्मा का नाम, त्रिकाली ध्रुव है। ये त्रिकाली ध्रुव को किन किन शब्दों से कहा? केवली अपन केवल ज्ञान वाले को बोलते ना, रानी ज्ञान बजाय से प्रणमित वाले को बोलते नहीं, सब त्रिकाली ध्रुव। और ऐसे तमिठदा, ऐसे उस आत्मा में जिसके इतने नाम हैं, स्थिर होना वाले मुनियों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां भी मुनि का अर्थ वही लगा लो, चौथे से लेकर त्रिकोण स्थान वाले सब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं ना। मुनिनो पावंती निब्बाणम, इसको ले ले करके सामने वाले कि देखो क्लियर क्लियर लिखा कि मुनियों को ही मोक्ष होता है, मुनियों गृहस्थों को मोक्ष होता ही नहीं। अरे भैया हम भी कहते हैं गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता, क्योंकि हम श्वेतांबर थोड़ी हैं, श्वेतांबर मानते हैं गृहस्थों को मोक्ष को क्यों कि लेकिन गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता ये बात भी सही नहीं है। गृहस्थों को जब मोक्ष होता है तो बीच में भी मुनि बन जाते, मुनि बन जाते हैं, मोक्ष होता है। अब कोई कहे कि सब शास्त्र में लगाते उसका तो अर्थ ये है क्यों, उसका अर्थ तो ये है क्या समझ आए ना, कभी पहले मुनि हो जाएंगे फिर मोक्ष हो जाएंगे, पुनस्थान तो एक क्रम से ही बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ऐसे मुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब देखो इस गाथा की विशेषता, टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक एक शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ किया है। क्या आत्मा को यदि परमार्थ कहते हैं तो उसका मतलब क्या, समय कहते हैं तो उसका मतलब क्या, शुद्ध कहते हैं तो उसका मतलब क्या, केवली कहते हैं तो उसका मतलब क्या, मुनि कहते हैं तो मतलब क्या, रानी कहते हैं तो मतलब क्या, सहाब कहते हैं तो मतलब क्या, हर एक कारण बता। अब एक कमी, अमृतचंद की कमी बताते हो ना, है तो बतानी पड़ेगी भैया, लिखी भी है सर, घबराना नहीं मैंने। इसमें उन्होंने ये तो सब बताया लेकिन नीचे की पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया, अकेला नीचे की पंक्ति में सहाब शब्द का अर्थ किया और बाकी सब बाकी को छोड़ दिया। मुनियो मुनिनो पावंती निर्वाणम, इसका कोई अर्थ नहीं किया संस्कृत टीका में, इसलिए ये एक एक एक, एक टीका भी लाया हूँ। लाया हूँ क्या, हम आपने ही रख दी है भाग्य से, मेरे को भी विकल्प आगे रख दो तो अच्छा है। इसमें देखो पढ़ो जी, इसमें उसके बाद में मुनियो पावंती निर्वाणम का संस्कृत में अर्थ नहीं है, तो मैंने हिंदी में भी कहाँ से लिखते, कभी सोचा स्वाध्याय में आए ख्याल में बोलो। हाँ
ज्ञान भी मोक्ष ज्ञान से सुहासु करोड़ों अवधे तत्वे सती मोक्ष तत्व तत्व सकल कर्मादि जात्यंतर विविध चित जाति मात्र परमार्थ आत्मा यदि जानत साधु युगपन एक ही भाव प्रवृत्ति ज्ञान गमन गमन दया ज्ञान गमन मय दया समय सकल नए पक्षों असंकीर्ण एक ज्ञान दया सुधा केवल चिन्मात्र वस्तु दया केवल मनन मात्र भाव दया मुनि स्वयं ज्ञान दया ज्ञानी स्वस्थ भवन मात्र दया स्वभाव स्वतंत्र भवन मात्र दया सद्भाव वाहि सब भेदे भी नाचे वस्तु
खत्म कर दिए ना। अब नीचे की आधा का नहीं है ना। अब देखो पढ़ा सबने है, ध्यान नहीं जाता किसी का, तो हमने इसमें लिखा है खोल के कि इन्होंने निजी गाथा में अर्थ ही नहीं किया, निजी की पंक्ति किया। अब वो मैं सब लिखा है, इसमें पढ़ के सुनाता हूँ सब, अभी सुनो सब। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गाथा का नीचे अर्थ नहीं किया, मुझको ये शक है कि लेखक ने जब लिखी होगी, लेखक माने नकल करने वाले लिपिकार, ان سے وہ پنکتی چھوٹ گئی پھر ختم. اب کیا کریں جب نہیں ملی تو ہندی والوں نے بھی نہیں کی, پھر ہندی کرنے والوں نے جتنا سنسکرت میں تھا اتنا کیا. ابھی ریسرچ کا وشے ہے کہ وہ کہیں سے 50 پرتیاں کھوجی جائے مول پرتیاں اور کسی پرتی میں وہ مل سکتی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ملے تو ہم بھی بنا کر کے اور وہ پنکتی کی پورتی کر سکتی ہے. کیوں یہی تو کہنا ہے نا کہ ایسا جو آتما کا سہاگ اس کا جو آشرے کرتے ہیں ایسے منی گن مکتی کو پراپت کرتے ہیں. اس کی سنسکرت بنا کے لکھ دے رہی ہے بس اور کیا ہے. کیوں بات تو اتنی ہے لیکن ہم نے وہ نہیں کیا کہ پھر کہیں گے بدل دی بڑھا دی اپنی طرف سے جوڑ دیا کچھ بھی کر دیا. تو ہم نے دوسرا راستہ نکالا اس کا. جیسے ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا تو جیسے ان نے اس کا ارتھ کیا ہم دونوں کا ارتھ کر کے اور نیچے کا پھر اپنا تیسرا ارتھ کیا. تیسرا ارتھ مانے دونوں کو ملا کر ایک تیسرا ارتھ بنایا. اب تینوں پڑھیں گے اپن کون کون امرچند کا جیسے ان کا اور پھر اپن نے بنایا تیسرا وہ. تب آپ کے خیال میں آئے گی کہ کیا بات پوری ہے. گھر پہ پڑھنا شانتی کے ساتھ جایا کریں گے ہے نا. یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب آتم خیاتی میں لکھا دیتا ہوں جان موکش کا کارن ہے. اب یہ جان موکش کا کارن ہے معلوم کون سا جان ہے؟ متریکالی دھرو. کیونکہ یہ سارے اسی کے وشیشن ہیں. ادا تو کہ جان موکش کا کارن ہے. جان میر دیہتم سدھ ہیتو یہ پیچھے کے کلش میں کہا تھا نا اسی کو گاتھا میں کہہ رہے ہیں. ज्ञान ही मुक्ति का साधन है. अब यहाँ ज्ञान का ज्ञान के तीन अर्थ होते हैं. कौन होते हैं तीन? ये ज्ञान नाम का आत्मा को भी ज्ञान बोलते हैं. आत्मा ज्ञान हम बोलते हैं ना. और दूसरे ज्ञान गुण को भी ज्ञान बोलते हैं. तीसरे ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान बोलते हैं. है? हाँ सदुपयोग लिया था कल पर अभी आगे आएंगे सर्वा सिद्धि पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा तीन तरह से व्याख्या होती है. प्रमीत अनिनेति प्रमाणम ज्ञायते अनिनेति ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम वा है ना जानातीति ज्ञानम. आया नहीं समझ में कुछ नहीं आया होगा. जो जानता है वो ज्ञान है. जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है अथवा जानना मात्र ज्ञान है. ये तीन तरह से व्याख्या पर जानने वाले ज्ञान है. एक को बोलते हैं कर्तिवात, एक को बोलते हैं कर्मवात और एक को बोलते हैं भाववात. कर्म करना धारे चाणक हरवासी जी में लगा ना करना धारे चाणक. कर्ण और आधार के अर्थ में अनट प्रत्यय होता है. तो ज्ञान तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है. ये कर्ण हो गया ना कर्ण और ज्ञानम जानाति ज्ञान जानता है ज्ञान करता हो गया. तो कर्ता के रूप में भी प्रयोग होता है कर्म के रूप में प्रयोग होता है और ज्ञप्ति मात्रम व ज्ञानम और जानना बस ये भाववासी हो गया. سمجھے نا ایسا اس کا ارتھ کیا. اب اتنے جان جان سب کتنے کتنے ارتھ ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں جان یہ کیا تو جان مانے جان ہے لکھا ہے نا. ہم نے لکھا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا. میں ابھی پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہی تو جان موکش کا کارن ہے کیونکہ وہ شبھا شبھ کرموں کے بند کا کارن نہیں ہے. اس کارن اس کے موکش کا کارن بنا بنتا ہے. वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है परम पदार्थ है आत्मा है. देखो आगे ना एक गुण के अर्थ में नहीं है पर्याय के अर्थ में नहीं है. तीन शब्द है ये परमार्थ है और परम पदार्थ है ना और आत्मा है. ये परमार्थ क्यों बोलते हैं इसे और परम पदार्थ क्यों बोलते हैं? ये भजन आता ना आज मैंने परम पदार्थ पायो आज मैंने परम पदार्थ पायो. और परमार्थ ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है इसलिए उसे परमार्थ बोलते हैं. परमार्थ माने क्या कि जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो परमार्थ परम अर्थ समझिए ना. अथवा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है इसलिए उसे बोलते हैं परमार्थ. तो अर्थ माने होता है पदार्थ
तो चाहे परम अर्थ कहो चाहे परम पदार्थ कहो, दोनों का एक ही अर्थ है ना। परमार्थ प्रयोजन है माने आत्मा, जिसका प्रयोजन है ना। तो देखो क्या चैतन्य भिन्न चैतन्य जाति मात्र, वो उसी को परमार्थ है, परम पदार्थ है, आत्मा है। अब वह ज्ञान जो कौन ज्ञान, जो परमार्थ है, जो परम पदार्थ है, सामने जो आत्मा है, अर्थात वो आत्मा एक ही साथ एक रूप से प्रवर्तमान, ज्ञान और गमन परमन रूप स्वरूप होने से समय है। अब ये क्या चक्कर है, देखो ये तो पहले दूसरी गाथा में आ गया है। एक बात समझ लो, जितनी भी धातु समझे, धातु सब समझते हैं, धातु माने क्रिया शब्द है, जिनसे क्रियाएं बनती हैं उन शब्दों को, मूल शब्दों को धातु बोलते हैं। जैसे करोति एक क्रिया है तो इसको डुक्री, डुक्री धातु है। भवती एक क्रिया है तो भू धातु है। धातु का मतलब समझे आप, देखो एक आयुर्वेद की धातु होती है, ये सप्त धातु होती है ना, मांस खून मज्जा। एक ये बर्तनों वाली धातु होती है, सोना चांदी, और एक शब्दों वाली धातु होती है, ये समझे ना, पंडितों की धातु। तो कहते हैं कहां गए पढ़ रहे थे अपन, यह ज्ञान आत्मा। अब जो भी धातु का अर्थ जानना होगा, एक गमन होगा, उसका गारंटी से नियम से अर्थ जानना भी होता है, आंख बीच के करना। गम धातु, गम माने जाना, टू गो और टू नो। गम धातु का अर्थ टू गो भी होता है और टू नो भी होता है। ये नियम है, ये सारा नियम है व्याकरण का। तो अब कैसा अर्थ करें कि जो चले सो ज्ञान और जो जाने सो ज्ञान, ठीक है ना। अब यदि एक गम धातु का प्रयोग पुद्गल के साथ हो, क्योंकि वो ही चलता है पुद्गल, बाकी जीव तो चलते नहीं, जीव और पुद्गल दो ही चलते हैं, तो अकेले पुद्गल के साथ हो तो उसका अर्थ हमें ऐसा गमन करेंगे, चलना कहें, प्रणमन करेंगे, प्रणमन भी है, वहां पर जानना नहीं लेना। और जब जीव हो तो उसे जानना और प्रणमना, जानना दोनों अर्थ लेना, समझे ना। तो कहते समय माने सम उपसर्ग है और अय धातु है, इसलिए समय का अर्थ जो जाने और प्रणमे एक साथ, उसको समय कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये समय शब्द की व्याख्या है। समय क्यों कहते हैं, अब देखो गच्छति माने जाना है, ये तो आप जानते हैं ना, और अवगच्छति माने जानना। अब उपसर्ग लग गया तो जानना अर्थ हो गया, फिर आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छति आना हो गया, फिर प्रति और लगा दिया तो प्रत्यागच्छति माने लौटना हो गया। अब मूल में तो एक ही शब्द है, वो गम। अब उसने जाना, जानना, लौटना, ये सब अर्थ हो जाते हैं उसके, आना, एक एक ही धातु में से जाना भी और आना भी हो जाता है। तो इस समय शब्द की व्याख्या की यहाँ पर, देखो पेज निकल गया, गड़बड़ हुआ, चलो उनतालीस है, हाँ उनतालीस को इसमें तो नहीं हो सकता, 334 होगा, हाँ हाँ एक सौ नहीं नहीं उसके पीछे की शायद, हाँ 191 का था। सुनो, इसलिए वो समय, आत्मा को समय कहते हैं, और समस्त नए पक्षों से अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध। अब यहाँ वो राग से रहत शुद्धता नहीं लेना, इन नए के विकल्पों से पार को निर्विकल्प को शुद्धता के अर्थ में लेना। हर जगह चार जहां चार जैसी नहीं लगा सकते शुद्धि, लिखा ना था उसमें, समस्त नए पक्षों से मिला हुआ नहीं है, माने नए पक्षों के विकल्प से पार है, इस ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ है शुद्ध, और केवल चिन्हमात्र वस्तु होने से केवली। केवली माने क्या, केवल चिन्हमात्र है और कुछ नहीं है, समझे ना, और केवल मनन मात्र होने से मुनि, मनन मात्र होने से मुनि और स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी और भ्रमण मात्र होने से स्वभाव अथवा अस्तित्व मात्र होने से सद्भाव। और स्वभाव के दो अर्थ किए, स्वभाव और सद्भाव, ये अर्थ किए। और कहते अब देखो पढ़ो, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि गाथा की दूसरी पंक्ति में समागत सहाब पद से आत्मख्याति में स्वभाव और सद्भाव ऐसे दो अर्थ किए हैं, और सहाब पद को छोड़कर शेष पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया है। लिखा है ना, ये मानो कब लिखी गई थी, 91-92 में, ये 90 से मैंने लिखना शुरू किया था। तो ये पुण्य पाप अधिकार तक आते थे 2-3 वर्ष लग गए होंगे, तो 52-53 में लिखी होगी। कितने वर्ष हो गए, 20 वर्ष होने को आ गए। और आप सब लोगों ने अनुवाद भी किया गुजराती का, पर पढ़ा भी, एक एक पंक्ति से पढ़ते हैं, गुरुदेव के वचन पढ़ते हैं, तो इसकी बात पर ध्यान नहीं गया कि देखो इसमें पूरी आ गया नहीं किया, आदि एक पंक्ति छोड़ दी। और हमने तो उस दिन लिखा है, लिख देने के बाद भी नहीं गया लिखा कर। अब आज बता रहे तो आपके जा रहा है ध्यान, अकल याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है, रहेगा बहुत बढ़िया बात है। इसकी एक तरकीब है, लोगों को याद रहे इसकी तरकीब क्या है वो भी बता दूं, एक मिनट, दो ही मिनट हैं। इसकी तरकीब क्या है कि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है उसमें एक प्रकार है कि उस पर जितनी अधिक देर तक उपयोग स्थिर रहेगा तो वो याद हो जाता है, और जितनी और ज्यादा देर तक रहेगा तो वो पक्का याद हो जाता है, और कम देर रहेगा तो याद नहीं होता है, क्योंकि अपने पहले अवग्रह होता है, फिर यह होती है, फिर अवाय होती है, फिर धारणा होती है। तो अवाय होके रह गया और धारणा में गया ही नहीं तो यहां से निकलते ही भूल जाओगे। तो वो धारणा कैसे बनेगी कि कुछ देर तक आप उसी बात पे सोचते हैं, और आप कैसे सोचेंगे, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका उपयोग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रजनकार की, अध्यापक की यह ड्यूटी है किसी न किसी बहाने से वहीं खड़ा रहे, आपको नहीं लगे तो उसी बात को दोहराता रहे तरकीब से। तो हमारी ट्रेनिंग होती ना, वो ट्रेनिंग में हमें विद्यार्थियों को ट्रेन करते हैं कि विद्यार्थियों को बस दो ही प्रभाष में आज पढ़ाना, तो एक घंटा में दो कहते हैं, हम तो 15 मिनट में पढ़ा देंगे, ये कुछ नहीं तरकीब से वही बोलते रहना तो बच्चों को याद हो जाएगा। तो तरकीब कैसे लगाना वो हम तरकीब में सिखाते हैं। देखो हमने बेटा समझ में आया तो आ गया तो बोलो, अब बोलोगे तुम नहीं बोल पाओगे तो फिर हम फिर एक दफे कहने का मौका मिले, अच्छा सुनो आप ध्यान से, तो फिर एक दफे कह देंगे, फिर बोलो, फिर इनने नहीं बोल पाया तो फिर एक दफे कह दिया, फिर इनने बोल दिया, अच्छा ध्यान दे रहे इसने ठीक बोला, क्या बोला ठीक, ये फिर एक दफे कह दिया। ऐसे हम 15 मिनट तक उसको ही घिसते रहेंगे तो सब बच्चों को याद हो जाएगा, और आप फटाफट अगली बैग पहुंच जाएंगे तो वो नहीं होगा यार। तो कैसे देना समय, ऐसे चुप हो जाओगे तो वे उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर भी अपने घर की सोचने लगेंगे कि बगल वाले को चोटियां भरने लगेंगे, कूदमबाजी शुरू हो जाएगी। उसको समय देना और खाली दिमाग छोड़ना नहीं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं तो वो हर एक सतर्क रहेगा, क्यों क्या पूछे दो ही से, कि किसी से भी पूछ सकता हूं ये कहोगे तो हर एक का सतर्क रहेगा। जो जो अध्यापक के विद्यार्थी सब सतर्क रख सकता है वो तरकीब से, तो उसकी क्लास में कभी हो गड़बड़ नहीं होगा, हो हल्ला नहीं होगा। और जिसने कह दिया कि हमने ठीक है ऐसा सोचने लग गया, पढ़ने लग गया, तब तक तो वहां बाजार में पूरा हल हो जाएगा, पकड़ नहीं आएगी क्लास की। तो उस चीज को उपयोग को कुछ थोड़ा देर तक वहां ठहरने देना, ध्यान है ना, क्या तक आ गए अपन, यहाँ पर वस्तु भेद नहीं है। अब आचार्य जयसेन गाथा के स्पष्टीकरण में जो कुछ कहते हैं उसका भावार्थ इस प्रकार है, भावार्थ क्यों लगाने पर पंक्ति पंक्ति से तुम अर्थ करो, ये सब चक्कर होता है ना, वो पंक्ति पंक्ति से जयसेन में बहुत चक्कर है, वो व्याकरण बताने लगते हैं बीच में, वो नए लगाने लगते हैं बीच में, वो बाल बोधनी टीका है ना, जैसे मैंने आपको बताने लग गया बीच में ना ऐसा, तो फिर वो अर्थ ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने अर्थ अपना लिखा है सब में। देखो एक बताऊं हेमचंद जी, लोग कहते क्या किया है,
इतने सबके थे तो भी अमृतचंद का अर्थ मैंने अपनी तरफ से लिखा, सबको खूब देखा और फिर अंदर ले गया और फिर लिखा। ऐसे जयसेन का अर्थ भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है इसमें, जो मैंने कल बताया था ना रजनी भाई को, कि तुम कर सकते हो तो कर लो, वहां पुराने से काम तुम्हारा चल जाए तो चला लो, यदि ये भाव आ जाए तो ये अर्थ देखो मैंने। अब आपको वैसा नहीं मिलेगा उसमें देखोगे तो हा? परमार्थ माने उत्कृष्ट पदार्थ, हमने ये अर्थ किया है। अथवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ रूप पदार्थ, ये उनने ये किया, इनने अलग किया था, इनने अलग किया। और अथवा मति शुद्ध अवधि मना पर्याय, केवल ज्ञान पर्यायों से सहित निश्चय न का विषय भूत परमात्मा ही परमार्थ है, इस प्रकार दृष्टि का विषय भूत आत्मा ही परमार्थ है, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। वहां परमार्थ का वो अर्थ किया था ना, यहाँ ये उन्होंने इतना लंबा किया। तो अथवा अथवा अथवा, तीन अथवा डाल करके, अब एक ध्यान देना इसमें, वो जितने भी अथवा डालेंगे जैसे उसमें एक अमृतचंद वाला अर्थ जरूर डाल देंगे। क्या नहीं आया समझ में? क्यों ये कहना चाहते हैं कि मैं अमृतचंद ने जो अर्थ किया उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक और अर्थ बता रहा हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये कितनी विनय की मर्यादा और भय का अभाव, हे गुरु जी के विरुद्ध हो जाएगा, गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था और मैं ऐसा कहूंगा तो अभी लोग सब मेरा गला पकड़ लेंगे हैं? और नहीं तो देखो जो गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो अभिमान हो जाएगा। तो बता गुरुदेव श्री इसका अर्थ ऐसा करते हैं, है ना, और वो सही है, लेकिन इसका अर्थ दूसरा ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। तो विनय पूर्वक दूसरा अर्थ हमारे ख्याल में आ रहा है तो हमने अपनी बात भी रख दी, इसमें कहां मर्यादा भंग होता है, इसमें कहां मर्यादा भंग हुई गुरु की, ख्याल में नहीं ना। देखो वह ज्ञान स्वभावी आत्मा हो गया, अभी समय कल के शाम को